पृष्ठ 104 कामायनी। आधुनिक युग की बृहद्रयी में तीसरा महाकाव्य कामायनी है। कामायनी में भी जायसी के पद्मावत किसी रूपक और कथानक के सम्मिश्रण की प्रवृत्ति है। वास्तव में वह कथात्मक ग्रंथ की अपेक्षा विचारात्मक ग्रंथ अधिक है, फिर भी उसमें कथा के साथ विचारों का सुंदर समन्वय हुआ है। इसमें प्रसंग वश चिंता, श्रद्धा, बुद्धि, लज्जा, काम, ईर्ष्या आदि मनोवृत्तियों का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रसाद जी प्राचीन के उपासक थे। वे प्राचीनता को उस सीमा तक ले गए हैं जहाँ की कल्पना के भी पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। कामायनी का कथानक आदिकाल के धूमिल वैदिक उपाख्यानों से लिया गया है। महाप्रलय में देव सृष्टि के निर्बाधित मधुमय हास विलास का अंत हो जाता है। केवल अकेले मनु बच रहते हैं। चिंता कातर एकाकी होकर वे खड़बड़ा उठते हैं। उसी समय काम गोत्र जा कामायनी से उनका परिचय और फिर परिणय हो जाता है। मानवीय संस्कारों और संस्कृति की नए सिरे से सृष्टि होती है, परंतु महाराज मनु प्राचीन देव संस्कारों को भुला न सके। वे पशु बलि करते हैं। इसी से श्रद्धा और मन मुटाव की जड़ जम जाती है। प्रसाद जी ने करुणालय आदि अपने नाटकों में पशु बलि का घोर विरोध किया है। श्रद्धा गर्भवती हो जाती है और वह अपनी भावी संतान की चिंता करने लगती है। मनु के हृदय में इससे भी ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्योंकि वे अविभाजित प्रेम चाहते थे। मनु श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। सारस्वत देश में पहुंचकर उनकी रानी इड़ा से, जो देवताओं की बहन थी और बुद्धि की प्रतीक थी, भेंट होती है। वहां मनु रहने लगते हैं और एक नई यंत्रमयी संस्कृति को जन्म देते हैं। जब वे सारस्वत देश की रानी इड़ा को भी अपनी काम वासना का विषय बनाने लगते हैं, तो इड़ा की प्रजा मनु ने पृष्ठ 105 प्रति विद्रोह कर उठती है और मनु आहत हो जाते हैं। श्रद्धा को स्वप्न में यह सवृत्त ज्ञात हो जाता है और वह अपने पुत्र मानव के साथ मनु की खोज में इड़ा के देश में पहुंच जाती है। वहां से श्रद्धा मनु को साथ लेकर तथा मार्ग में मानव को इड़ा के साथ सौंप कर कैलाश की ओर चली जाती है। कैलाश प्रदेश में ज्ञान, इच्छा और क्रिया के स्वर्ण रजत और लौहमयी तीन बिंदुओं को पृथक दिखाकर अपनी स्मृति रेखा से उन्हें एक कर देती है तथा त्रिपुर दाह के कथानक को रूपक में सार्थक करती हुई तीनों के समन्वय का उपदेश देती है। कामायनी की यह समन्वय भावना भारतीय संस्कृति का एक प्रधान अंग है। इसमें शैव दर्शन की समरसता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन हुआ है। कामायनी भी गांधीवाद के प्रभाव से खाली नहीं है। उसमें भी यांत्रिक सभ्यता का विरोध हुआ है। प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर जीनी। कामायनी संघर्ष। कामायनी के जो आलोचक कहते हैं कि प्रसाद जी ने श्रद्धा को ऊंचा उठाकर बुद्धिवाद के विरुद्ध हृदयवाद का पक्ष लिया है, उसमें इतना ही सत्य है कि मनु को श्रद्धा द्वारा अंतिम रहस्य के दर्शन होते हैं। यह बात किसी अंश में सत्य भी है, क्योंकि तत्व दर्शन में जहाँ बुद्धि पीछे रह जाती है, वहाँ श्रद्धा और प्रतिभा ज्ञान द्वारा रहस्य का उद्घाटन हो जाता है। किंतु प्रसाद जी ने तर्क और बुद्धि की उपेक्षा नहीं की है, वे समन्वयवादी हैं। श्रद्धा ने मानव को इड़ा के हाथ इसलिए सौंपा था कि बुद्धि और श्रद्धा का समन्वय हो जाए। मानव को इड़ा के साथ रहने का आदेश देते हुए कामायनी कहती है, हे सौम्य, इड़ा का शुचि दुलार हर लेगा तेरा व्यथा भार। यह तर्कमयी, तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म अभय। कामायनी दर्शन। कामायनी में प्रकृति के सौम्य और उग्र रूप दोनों के ही चित्रण मिलते हैं। सौम्य चित्रणों में छायावादी शिल्प विधान का प्रभाव है और कहीं कहीं रहस्यवाद की भी झलक मिल जाती है। महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान ग्रह नक्षत्र और विद्युत कर जिसका करते थे संधान। कामायनी आशा कर पृष्ठ 106। कामायनी के प्रति यह एक आक्षेप भी है कि उसमें मनु का चरित्र गिरा दिया है। यह युग नारी के प्राधान्य का अवश्य है, किंतु एक के चरित्र को उठाने के लिए दूसरे के चरित्र को गिरा देना न्याय संगत नहीं जचता। कामायनी को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह नायिका प्रधान काव्य है। जिस प्रकार कानून में ही इंक्लूड शी रहता है, उसी प्रकार साहित्य में भी नायक में नायिका को भी शामिल समझना चाहिए। कामायनी में रूपक की दृष्टि से मनोवैज्ञानिकता की ओर संकेत किया गया है। कामायनी के कथानक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किए बिना हम उसे सर्वकालिक, सर्वदेशिक तथा सार्वजनिक महाकाव्य के उच्च पद पर अधिष्ठित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कामायनी में चिंता, आशा, काम वासना, बुद्धि आदि मनोवृत्तियों का सुंदर वर्णन हुआ है। आध्यात्मिक अर्थ में यदि श्रद्धा को ईश्वर माना जाए तो मनु का मानव दुर्बलताओं से पूर्ण चरित्र आश्चर्यजनक नहीं रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि रूपक के निर्वाह के लिए मनु के आदिम पुरुष और सभ्यता के प्रवर्तक होने के चीर प्रतिष्ठित गौरव का बलिदान किया गया है। जायसी में भी कहीं कहीं रूपक के लिए कथा में लौकिक संबंधों का पूर्णतया पालन नहीं हो सका है। पद्मावत में रत्नसेन के तोते द्वारा पद्मावती के रूप वर्णन मात्र से उस पर मुग्ध होकर विरह विवल हो जाने की बात को शुक्ल जी ने अस्वाभाविक बतलाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सच्चा प्रेम नहीं वरन मोह है। इस प्रकार शाब्दिक वर्णन मात्र को सुनकर विरह व्याकुल होना किसी अंश में अस्वाभाविक अवश्य है, किंतु इसमें रूपक का निर्वाह ठीक बैठ जाता है। तोता को गुरु माना, गुरु के उपदेश मात्र से साधक को भगवान में आसक्ति हो जाती है और वह विरह से व्याकुल हो जाता है। नागमती रत्नसेन की विवाहित सौ पत्नी है, फिर भी आध्यात्मिक पक्ष में उनको दुनिया का धंधा कहा गया है। यहाँ पर जो बात अप्रस्तुत विधान में ठीक समझी जाती है वह प्रस्तुत में अनुचित सी प्रतीत होती है। साकेत संत, जिस प्रकार गुप्त जी ने अपने साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र को प्रधानता दी है, उसी प्रकार पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने अपने साकेत संत में भरत जी के चरित्र को महान प्रदान महत्ता प्रदान की है। भरत जी तुलसी के मानव में यथोचित महत्ता प्राप्त कर चुके थे। गोस्वामी जी ने उनको भाई भक्ति का आदर्श मानते हुए राजमद से अछूता बतलाया है। भरत ही होइ न राजमद विधि हरि हर पद पाई, कबहु के काजी सी करनी छीर सिंधु बिन साई। फिर भी भरत जी का इतना महत्व है कि वे स्वतंत्र काव्य का विषय बन सकते हैं। प्राप्त किया हुआ राज्य ठुकराना उन्होंने भारतीय मर्यादा का सजीव उदाहरण उपस्थित किया था। मिश्र जी ने इन्हीं के पावन चरित्र को अपनाया है। इस पुस्तक की विशेषता यही है कि इसमें कवि अपने चरित नायक के हमेशा साथ रहा है। इसी पृष्ठ 107 कारण उसमें मंथरा की कथा नहीं आई है, केवल इतना ही कह दिया गया है कि चलते समय भरत के मामा युधाजित मंथरा को इशारा दे आए थे कि वह कह गई और भरत का हित संभाले रहे। इसका युधाजित ने पीछे से उल्लेख भी किया है। है धन्य मंथरा ही वह, यद्यपि दासों की दारा, जो समझ गई सब बातें पाकर बस एक इशारा। साकेत संत, इस ग्रंथ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भरत जी युधाजित के विशेष आग्रह पर ही कहके देश गए थे। जीत मामा की हुई विशेष, इसमें दशरथ जी दोष मुक्त हो जाते हैं और मंथरा को भरत से सुत पर भी संदेह कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। मिश्र जी ने और भी कई नई उद्भावनाएं की हैं। इन्होंने राम मिलन के अर्थ भरत के वन में राजसी ठाट बाट से युक्त होकर जाने का भी कारण बता दिया है और लक्ष्मण की इस शंका के लिए स्थान नहीं रखा कि वे निर्द्वंद शासनाधिकार प्राप्त करने के लिए राम पर आक्रमण करने आए हैं। भूप के अभिषेक के सब साज लो, तीर्थ के जल और पावन ताज लो, छत्र चंबर गजादि वाहन संग हो, चक्रवर्ती के सभी वे रंग हो, सात सेना हो की नृप को मान दे, सात हो मुनि मंडली की विधान दे, सात परिजन हो की सेवा भार ले, सात परिजन हो की प्रभु स्वीकार ले। साकेत संत, इस पद्य भाग में पावन के साथ ताज शब्द अवश्य खटकता है। मिश्र जी ने भरत के आगमन की सूचना राम को कोलो द्वारा दिला दी है और लक्ष्मण जी के रोष के लिए गुंजाइश नहीं रखी है। राम और भरत को वृहद सभा में एकत्रित करने से पूर्व उन्हें राम से एकांत में मिला दिया है, जिससे कि वे अपने सब उद्देश्य भरत को बतला दें। इस ग्रंथ में भारत की अखंड सांस्कृतिक एकता और उसके संरक्षण की पुकार है, जो देश की विभाजन संबंधी समस्याओं की प्रतिध्वनि कही जा सकती है। दक्षिण तो मैं देखूंगा ही, पर उत्तर पर आश न आवे। करो व्यवस्था भरत की कड़ी की बड़ी, पृष्ठ 108 की जगह विदेशी काश न आवे। कहा जनक ने पूर्व दिशा में स्थिर है अपनी आर्य पताका, कैकेयी ने कहला भेजा मैं साधूंगी पश्चिम नाका। साकेत संत ग्रंथकार एक राष्ट्रता का आदर्श शत्रु की भौतिक पराजय और दासता के आधार पर नहीं चाहता है, वरन वह हृदय की जीत का समर्थक है। शत्रु पर नैतिकता और सद्व्यवहार द्वारा विजय प्राप्त करना गांधीवादी हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है। बनेंगे दक्षिण उत्तर एक, नरों का जब हो उरसे मेल। साकेत संत 12:45। इसी भावना के अनुकूल कवि एक आदर्श समाज का चित्रण करता है। साम्राज्य अपने अंगों की संस्कृति को नष्ट करके जीवित नहीं रह सकता, वरन उसके संरक्षण में ही राज्य की संपन्नता है। सभी निज संस्कृति के अनुकूल एक हो रचे राष्ट्र उत्थान, इसलिए नहीं कि करे सशक्त निर्बलों को अपने में लीन, इसलिए कि हो विश्व हित हेतु समुन्नत पथ पर सब स्वाधीन। साकेत संत 12:49। भरत जी की महत्ता दिखाना इस पुस्तक का उद्देश्य है ही, किंतु साथ में मांडवी भी उपेक्षित नहीं रही है। उसके तप और त्याग की बड़ी सुंदर झांकी दिखाई गई है। देखिए, विकसित प्रभा प्रभाकर की है, पर न कमलिनी मोद मनाए। था बसंत आंखों के आगे, पर के लिए थी पीक का स्वर था। अह, मांडवी को तो आहो का भरना भी वर्जितत्तर था। जो है दूर उसी को आशा रख कर मन समझाया जाए। प्रश्न 109। समझ सरा हूँ मैं उस मन को, पास रहे पर पास ना आए। साकेत संत 14:49। पास रहे पर पास ना आए में मांडवी की विरह व्यथा उर्मिला की व्यथा से अधिक बढ़ जाती है। यद्यपि यह ग्रंथ विचार प्रधान है और इस कारण उसमें भावुकता तथा कवित्व की अपेक्षाकृत कमी दिखाई देती है, तथापि ऊपर के से स्थल इसे भावुकता शून्य होने के दोष से बचाए रखते हैं। कुरुक्षेत्र वर्तमान बुद्धिवादी युग के महाकाव्यों में विचारात्मकता को अधिक आश्रय मिला है। कथानक विचार वेली का आश्रय स्थान मात्र बन जाता है। दिनकर जी कुरुक्षेत्र नामक काव्य में प्राचीन कथानक के सहारे युद्ध की अनिवार्यता पर विचार करते हुए पुराने चोले में एक नई आभा आत्मा का प्रवेश कराते हैं। इस काव्य में अहिंसा का महत्व अवश्य स्वीकार किया है, किंतु साथ ही यह बताया गया है कि वह तभी सफल बन सकती है जब संसार उसके योग्य बन जाए। तब तो शायद अहिंसा के प्रयोग भी की भी आवश्यकता न रहेगी, किंतु जब तक संसार में मद मात्सर्य और हिंसा वृत्ति है, तब तक युद्ध का अस्तित्व सार्थक रहेगा। युद्ध को तुम नित्य कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलशी संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। कुरुक्षेत्र लेखक का विश्वास है कि समविभाजन के साम्यवादी आधार पर ही शांति की स्थापना हो सकती है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। कुरुक्षेत्र वर्तमान युग में और भी महाकाव्य लिखे गए हैं। रघुवंश के अनुकरण में लिखा हुआ श्री हरदयलाल सिंह का दैत्यवंश ब्रज भाषा में लिखा गया है, उसमें भी कई राजाओं के चरित्र हैं। यद्यपि दैत्यों में भी प्रहलाद और बलि जैसे उदार चरित्र राजा हुए हैं, तथापि दैत्यवंश को महाकाव्य का विषय बनाना इस युग की स्वतंत्र प्रवृत्ति का द्योतक है। इस युग के महाकाव्यों पर अधिकांश में गांधीवादी प्रभाव है। वैदेही वनवास पृष्ठ 110 में भी गांधी जी का शांतिवादी स्वर मुखरित हो रहा है। सब वर्तमान युद्धों की विनाशमय प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया है, इनमें सरल जीवन की भी पुकार है। आजकल के महाकाव्यों के नायक भी लोक प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुष ही हैं, किंतु उनका अति मानवीय रूप विलीन हो गया है। इन पर वर्तमान बुद्धिवाद का अधिक प्रभाव है। प्रकथन के साथ इन महाकाव्यों में प्रगीत तत्व भी है। यह युग का प्रभाव है। महाकाव्यों की परंपरा में नवीन उपलब्धियां, यद्यपि यह युग मुक्तक काव्य में, तथापि प्रबंध काव्यों का नितांत अभाव नहीं है। पार्वती सावित्री अम्बपाली पद पर कई छोटे पूरे महाकाव्य के नाम से पुकारे जाने वाले काव्य निकले हैं, किंतु उनमें पार्वती नाम का महाकाव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके लेखक श्री रामानंद तिवारी भारती नंदन है। यद्यपि इसकी कथा कुमार संभव पर आश्रित है, तथापि इसमें शैव दर्शन, धर्म, संस्कृति और नीति का अच्छा वर्णन हुआ है। इसका इतना अवश्य है कि वह कथा प्रसंग से अलग सा हो गया है। महाकाव्यत्व के परंपरित प्रतिमानों के आलोक में हमें कतिपय नवीन आदर्शों पर भी अद्यतन महाकाव्यों में दृष्टिक्षेप करना चाहिए। आज के महाकाव्यों में महाकाव्यों की बृहत्तरी में भी बौद्धिकता की ओर आग्रह, विविध राजनैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा नवयुग की निर्मित के लिए कवि का व्यक्तिगत संदेश आदि विषय स्वतः ही आ गए हैं। आजकल के महाकाव्यों के बीच बीच में गीतों का भी समावेश हुआ है। यह युग का प्रभाव है। खंड काव्य। खंड काव्य में प्रबंध काव्य का सा तारतम्य तो रहता है, किंतु महाकाव्य की अपेक्षा उसका क्षेत्र सीमित होता है। उसमें जीवन की वह अनेक रूपता नहीं रहती जो कि महाकाव्य में होती है। उसमें कहानी और एकांकी की भी घटना रिपीट उसमें कहानी और एकांकी की भांति घटना के लिए सामग्री जुटाई जाती है। साहित्य दर्पणकार खंड काव्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। खंड काव्यम भवेत काव्यस्य ये कदे शानुसारी च। साहित्य दर्पण अर्थात खंड काव्य एक देश या अंश का आजकल की भाषा की में एक प्रधान घटना का अनुसरण करता है, जैसे मेघदूत। हिंदी में सुदामाचार्य, जयद्रथ वध, पंचवटी अनक खंड काव्य के अच्छे उदाहरण है। अंग्रेजी में टेनिसन की एनक आर्डन को इसी प्रकार की कविता कहेंगे। अंग्रेजी में खंड काव्य के लिए कोई विशेष नाम नहीं है, वह प्रकथनात्मक काव्य के अंतर्गत आता है। महाकाव्य के छोटे छोटे कथानक को एपिसोड कहते हैं, जैसे अंगुली में सुहराव रुस्तम की कथा जो फारसी पृष्ठ 111 शाहनामे से ली गई है। हिंदी में प्राचीन काल में और आधुनिक काल में भी बहुत से खंड काव्य लिखे गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जानकी मंगल, पार्वती मंगल, नाचू, नंददास जी का भ्रमर गीत और रास पंचाध्यायी, जटमल की गोरा बादल की कथा, नरोत्तम दास का सुदामाचरित, गुप्त जी का अनग, जयद्रथ पद, नहुष, काबा और करबला, रत्नाकर जी का गंगावतरण, उधव शतक तथा हरिश्चंद्र जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों पर लिखे हुए खंड काव्य हैं। इनमें इतिहास, पुराण और जनश्रुति के पट पर रंगीन चित्र अंकित किए गए हैं। रामनरेंद्र त्रिपाठी के पथिक मिलन, स्वप्न तथा सियाराम शरण जी गुप्त का उन्मुक्त कवि कल्पना प्रस्तुत आख्यान है। इनमें से कुछ जैसे तुलसीदास जी के जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नेचू आदि गेय भी है। एक विशेष भेद, एकार्थ काव्य। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने महाकाव्य और खंड काव्य के बीच की एक विधा एकार्थ काव्य के नाम से मानी है और प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और वैदेही वनवास को इसके अंतर्गत रखा है। उसका कथन है कि महाकाव्य में कथा प्रवाह विविध भंगिमाओं के साथ मोड़ लेता हुआ आगे बढ़ता है, किन्तु एकार्थ काव्य में कथा प्रवाह के मोड़ कम होते हैं। कम और ज्यादा किए सापेक्ष शब्द हैं। कामायनी के कथा प्रवाह में काफी मोड़ और कथा विस्तार है। कामायनी और साकेत में महाकाव्य के पांचों तत्व सानुबद्ध कथा, वस्तु वर्णन, भाव व्यंजना तथा संवाद, नायक और नायिका की उदारता के साथ उद्देश्य की महत्ता पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हाँ, साकेत में भाव व्यंजना का कुछ अधिक अवश्य है, किन्तु दोष सब में होते हैं। भावों की उदारता, वर्णनों की विशालता और रस संचार में साकेत, कामायनी, वैदेही वनवास अपना विशेष स्थान रखते हैं और उनको महाकाव्य का पद न देना इस युग के साथ अन्याय है। समाप्त।